आन्या पहले तो चौंक गई थी, फिर उसने बैग पकड़कर हाँ में सर हिला दिया। अन्वय वापस किचन में चला गया और उसके लिए ओट्स बनाने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से वहाँ आया तो देखा आन्या हॉट वाटर बैग को पेट पर लगाए बैठी बैठी ही सो रही थी। शायद दर्द से कुछ राहत मिल गई थी इसलिए उसकी आंख लग गई थी। पहले तो अन्वय ने सोचा कि उसे सोने दे, फिर याद आया कि उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। उसने खाने की ट्रे वहीं टेबल पर रखी और प्यार से उसके कंधे को छूते हुए बोला, आन्या उठ जाओ, कुछ खा लो फिर सो जाना। आन्या नींद में हिली और दूसरी तरफ लुढ़कने को हुई कि अन्वय ने तुरंत उसको अपनी बाहों में लपेटते हुए अपनी तरफ खींच लिया। आन्या का चेहरा उसके सीने से जा टकराया। दोनों के दिल में हलचल सी हुई और आन्या ने इन अजीब एहसासों को महसूस करते ही अपनी आंखें खोल दीं। खुद को उसके सीने से लगा देख उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने झट से अपना सर पीछे हटाया। अन्वय भी उससे दूर हो गया और बड़ी ही सहजता से बोला, तुम उठ गई, चलो अब जल्दी से डिनर करो, उसके बाद अच्छे से सो जाना। उसको इतना सहज देख आन्या ने भी अपनी घबराहट को छुपाया। अन्वय ने उसके सामने ट्रे रख दी और उसको खाने को कहा। आन्या ने बिना नानुकुर किए खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद अन्वय ने उसे हल्दी वाला दूध पिलाया। जब तक आन्या ने उसे खत्म किया, अन्वय ने हॉट वाटर बैग का पानी चेंज कर दिया क्योंकि पानी ठंडा हो गया था। वो उसमें वापस गर्म पानी डालकर ले आया। खाली बर्तन साइड किए तो आन्या लेट गई। अन्वय ने वापस उसके पेट पर बैग रखते हुए उसको चादर से ढक दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब आराम से सो जाओ, कल डॉक्टर के पास चलेंगे। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। वैसे तो आन्या के पास पापा और मम्मी दोनों थे, पर कभी किसी ने इस तरह उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था। कितना तरसती थी वो उनके प्यार भरे एहसास को महसूस करने के लिए। कितना तरसती थी वो कि कभी तो वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरे, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। आज पहली बार उसने महसूस किया कि जब कोई प्यार से सर पर हाथ फेरता है तो कितना अच्छा लगता है। आन्या ने उसकी दूसरी हथेली को थामकर अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। आज अन्वय ने उसे रोका नहीं, उसको आराम से सोने दिया। आन्या कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई तो अन्वय ने धीरे से उसके हाथ से अपनी हथेली खींच ली और उसको अच्छे से ढकते हुए दूसरी तरफ जाकर लेट गया। कुछ ही देर में वो भी सो गया। आज उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, फिर भी उसको अपनी नहीं आन्या की फिक्र हो रही थी। अगले दिन आन्या थोड़ा बेहतर फील कर रही थी, पर पेट में दर्द अब भी था। वो बेड पर लेटी हुई थी। अन्वय आज कॉलेज नहीं गया था, उसने आन्या को सुबह दलिया खिला दिया था, उसके बाद फिर वो अपने पेट को सेक रही थी। अन्वय ने ही सारा काम किया, उसने सुबह ही उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। सब काम करने के बाद वो ब्रेकफास्ट बनाने चला गया, क्योंकि आन्या को तो दलिया खिला दिया था, पर कल से उसने कुछ नहीं खाया था और आन्या ने भी सुबह 7 बजे दलिया खाया था और अब 10 बज गए थे, तो उसने उसके लिए भी खाना बनाना शुरू किया। हाँ, आज वो खाना नहीं बना रहा था बल्कि एक जंग लड़ रहा था आटे के साथ। कुछ देर घंटे बाद वो किचन से बाहर आया, तब तक आन्या नहा कर आ गई थी। अन्वय ने उसे देखा, फिर अपने कपड़े लेकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद वो उसके और अपने लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया। आन्या ने जैसे ही प्लेट देखी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से कहा, ये क्या बनाया है आपने? अन्वय ने नजरें झुकाकर ट्रे देखी तो उसने पाकिस्तान के नक्शे जैसी रोटी रखी थी, जो कहीं से कच्ची थी तो कहीं से जली हुई थी। आन्या ने रोटी देखी, फिर उसकी शक्ल देखी और एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। अन्वय ने हैरानी से नजरें उठाकर उसे देखा। आन्या ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, ये क्या बनाया है तुमने? ऐसा लग रहा है किसी देश का नक्शा बना हुआ है, ऊपर से आधा कच्चा है और आधा जला हुआ है। तुम्हें रोटी बनानी भी नहीं आती? जब मैंने रोटियां बनानी सीखी थी तब भी मैं इससे अच्छी रोटियां बनाती थी, और तुम इतने बड़े होकर भी ऐसी रोटियां बनाकर लाए हो? इसे इंसान तो क्या, गाय भी खाने से मना कर दे। वो लगातार बोलते हुए हंसने में लगी थी। अन्वय का मजाक उड़ाने में उसे बहुत मजा आ रहा था। अन्वय पहले तो हैरानी से उसे देख रहा था, पर जैसे जैसे उसने उसकी बातें सुनी उसके भाव बदलने लगे, आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। आन्या का हंसना बंद नहीं हो रहा था। आखिर में अन्वय ये और बर्दाश्त नहीं कर सका और वो गुस्से से चीखा, स्टॉप इट। उसके अचानक चिल्लाने से आन्या डर गई और खामोश घबराई नजरों को बड़ा बड़ा करके उसे देखने लगी। अन्वय ने प्लेट बेड पर रख दी और गुस्से से बोला, हाँ नहीं आती मुझे रोटियां बनानी, तो क्या, कोशिश तो की ना मैंने रोटियां बनाने की, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। भले ही खराब बनी है पर इतनी मेहनत से मैंने रोटी बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे एहसान मानने के बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रही हो। बहुत बेकार रोटियां बनी है ना, इसे गाय भी नहीं खाएगी। पर अब तो बन गई तो एक काम करो, इसे कूड़े में फेंक दो और अपने लिए खुद बढ़िया बढ़िया रोटियां बनाकर खा लो, और थोड़ा जल्दी करना, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। उसने आन्या को घूरते हुए गुस्से में सब कहा और फिर दनादन कर बालकनी में चला गया। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा और आंखें भींच ली, मुठियां कस गईं। किसी ने आज तक उसका मजाक नहीं उड़ाया था, और आज उड़ाया था तो आन्या ने, वो भी तब जब उसने उसी के लिए इतनी मेहनत की थी। इस बात का अन्वय को बुरा भी लगा था और अब गुस्सा भी आ रहा था कि उसने वो सब किया ही क्यों उसके लिए। वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं आन्या तो बुत बनी हैरानी से उसकी बातें ही सुनती रही। कुछ देर बाद उसको एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अन्वय को हर्ट कर दिया है, जबकि उसने तो उसके लिए ही रोटियां बनाई थी, वो भी पहली बार। कितनी दिक्कत हुई होगी उसे। आन्या का मुंह छोटा सा हो गया। उसने खाना देखा, फिर बालकनी की तरफ नजरें घुमाई जहां अभी अभी अन्वय गया था। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठकर बालकनी की तरफ चली गई। अन्वय ने उसके आने की आहट पाकर अपनी आंखें खोल दी और बिना पीछे देखे ही सख्त आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? जाकर चावल खा लो और तैयार हो जाओ, कुछ देर में हमें निकलना है। आन्या के कदम एक पल को ठहरे, फिर वापस उसने उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तुम्हें पता है ना मैं पागल हूँ, कभी भी कुछ भी बोल जाती हूँ, बोलने से पहले सोचती ही नहीं हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, जबकि कल से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था, जो तुम मेरे लिए कर रहे हो पहले कभी किसी ने नहीं किया। तुम बहुत खास हो मेरे लिए, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम मुझसे नाराज हो, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दुनिया ही मुझसे रूठ गई है। प्लीज मुझसे नाराज मत रहो, एक तुम ही हो मेरे पास। अगर तुम भी मुझसे नाराज हो जाओगे तो मैं पहले जैसे बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मुझे तुम चाहिए हमेशा मेरे साथ, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आन्या की आवाज भारी हो गई थी, वो बोलते बोलते खामोश हो गई। अन्वय रेलिंग पकड़े खड़ा खामोशी से उसकी बात सुन रहा था, उसकी भारी होती आवाज को महसूस भी कर रहा था। आन्या जैसे ही चुप हुई, अन्वय पीछे की तरफ मुड़ने लगा। आन्या उसके ठीक पीछे ही खड़ी थी। जैसे ही अन्वय पीछे पलटा, पीछे खड़ी आन्या से टकरा गया और आन्या के कदम लड़खड़ा गए। गिरने के डर से उसके हाथ आगे बढ़े। अन्वय ने उसको गिरता देख झट से उसकी कमर पर अपनी बाह को लपेटकर उसको अपनी तरफ खींच लिया। आन्या की हथेली उसके सीने से जा टकराई।